ദമണന്തമണിന്ദിയ മണുവമമ പാഥസോഖമണവജം കേവലപഹോഹണിജ്യ ദുണ്ണയതിമിരം ജിണം നമഃ.
യ ശ്രീ വീർസേൻ ആചാര്യ രചിത ധവൽ ടീക്കാ ഹൈ ജോ ഷഠണ്ഡാഗം ഗ്രന്ഥ പർ ലിഖി ഗൈ തി ജിസ്കെ കർത്താ ഹൈ പുഷ്പദന്ത ഔർ ഭൂതബലി ആചാര്യ ഔർ ജിനോനെ ശ്രീ ധർസേൻ ആചാര്യ കെ ഉപദേശ കെ അനുസാര യേ ഗ്രന്ഥ ലിഖാ താ ഔർ ജോ ഉപദേശ ഹമേ മഹാവീർ ഭഗവാൻ കെ ദ്വാരാ ജോ പ്രതിപാദിത ദിവ്യ ധ്വനി ജോ ഹൈ ഉസ്കെ ദ്വാരാ യേ ചലാ ആ രഹാ ഹൈ. പൃഷ്ഠ സംഖ്യ 504 പർ ആയേ ഹം. अभी हम मार्गणाओं में ये सब 20 प्ररूपणाएं लगा रहे हैं. उसमें हमने नरक की देखी, गति मार्गणा चल रही. गति मार्गणा में नरक गति, तिर्यंच गति देखी. अब यहाँ मनुष्य गति की बात चल रही है. तो इसमें चार प्रकार के मनुष्य कहेंगे. कौन कौन से चार याद है? हाँ, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी. यहाँ तीसरे स्थान पर मनुष्यनी का आलाप कहा और चौथे में मनुष्य अपर्याप्त. अब यहां से हम लगाएंगे सामान्य पर्याप्त मनुष्य. पहले हमने क्या क्या मनुष्यनी तो उस वो जो भाव से स्त्रीवेद है वो नववेद तक है, परंतु वही जीव अपगत वेदी होकर 14 गुण स्थान पार करेगा, सिद्ध भगवान होगा, यानी उसी भव में वो मोक्ष जा सकता है. ये बात आएगी आगे मनुष्यनी के आलाप में आ जाएगी.
मनुष्यनी कहते ही हम द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो भाव की अपेक्षा ऐसा है कि जो पूर्व में वो था इस अपेक्षा से उसको कहेंगे.
जब वेद मार्गणा का कथन होगा तब हम वो स्त्री वेद वाला कहाँ तक है, फिर वो वहाँ कहेंगे नौवे तक है. परंतु अभी अपना मनुष्य का प्ररूपणा किसकी चल रही है? गति मार्गणा से मनुष्य गति के. तो ये जो मनुष्यनी वाला जीव है वो 14 ही गुणस्थान प्राप्त करके सिद्ध हो जाएगा, इस तरह से उसका कथन कर. तो कल हमने मनुष्य सामान्य के आलाप देखे थे, तो जो कुछ पॉसिबल है वो सब वहाँ 14 ही गुणस्थान होते हैं वगैरह वगैरह बातें हमने देखी थी. अब आज सामान्य पर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर ये बात हम देखेंगे, सामान्य में पर्याप्त जीवों के आलाप. क्या कहते हैं? कौन लगाएगा? अभी पहले लगाना है ना इसको. इसको लगाया था. हाँ, पढ़ना रह गया था. अच्छा, हाँ अभी हम पढ़ेंगे. फिर सामान्य पर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर तो 14 गुणस्थान, ये मनुष्यों में ही 14 ही हो सकते हैं. बाकी तो हमने देखा देव नारकियों में तो 4-4 ही होते हैं और तिरंचों में 5 होते हैं. तो 14 गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास. अभी पर्याप्तों की बात ली है इसलिए संगी पर्याप्त लेना. 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा रूप भी स्थान होता है. क्योंकि 14 गुण स्थान लिए हम, तो क्षीण संज्ञा कौन कौन से गुण स्थान हो गए? हाँ, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां. मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, वैक्रेक का योग, वैक्रेक मिश्र का योग के बिना 13 योग, यानी कौन कौन से हो गए? हाँ मयंक भाई, हाँ, 4 मन के, 4 वचन के पर्याप्त है ना. हाँ, औदारिक. पर्याप्त का आलाप चल रहा है. तीन मिश्र, हाँ. देखो देखो आप कौन से है वो गिनो. अपना क्राइटेरिया क्या है? पर्याप्त मनुष्य है. चार मन के, चार वचन के, आहारक, औदारिक, पर्याप्त है ना, मनुष्य है पर्याप्त बराबर। हाँ देखो क्या पहले इन्होंने लिखा, दो बिना करेंगे तो 13 रह गए, अब इसमें से किसको निकालना है। तथा पूर्वोक्त तो दो और औदारिक मिश्र और आहारक मिश्र का योग और कारमान योग, ये 3, वैकृत वाले 2, आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र और कारमान, ये 3, इस तरह से 5 बिना, तो 5 योगों के बिना 10 योग। तथा अयोग स्थान भी है, क्योंकि हमें पर्याप्त में 14वें वाले को भी लेना है, तो अयोग वाला भी स्थान लेना। हाँ देखो योग समझना, योग नहीं, देखो पर्याप्त जीव लेना है हमको, तो पर्याप्तों में कोई भी मिश्र योग लेना नहीं है, और मनुष्य है इसलिए वैकृत को भी नहीं लेना है। तो कौन सा नहीं लेना, वैकृत नहीं लेना, वैकृत मिश्र नहीं लेना बराबर, औदारिक मिश्र भी नहीं है और आहारक मिश्र भी नहीं लेना, आहारक को लेना, आहारक मिश्र को नहीं लेना, और कारमान का योग को नहीं लेना। तो नहीं लेने वाले 5 है, तो किसको लेना, तो मन के 4, वचन के 4, औदारिक और आहारक, औदारिक का योग और आहारक का योग, क्योंकि वो भी पर्याप्त हो जाता है ना, जब आहारक का योग होता है तो वो आहारक शरीर वाला वो पर्याप्त हो जाता है, जब तक मिश्र है तब तक वो अपर्याप्त था। पूर्वोक्त ने पहले उन्होंने वैकृत वैकृत मिश्र लिखा, देखो उसको हम फिर पढ़ेंगे, देखो तीसरी लाइन में फिर पढ़ती हूँ, त्रस काय के आगे मिला। हाँ डॉक्टर, त्रस काय जहाँ लिखा है ना तीसरी लाइन में, उसके आगे पढ़ूंगी मैं अभी। अब ये पूर्वोक्त दो कौन से है, तो वैकृत का योग, वैकृत मिश्र का योग के बिना 13 योग, ये 2 वाले पूर्वोक्त हो गए, अथवा पूर्वोक्त दो और औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र और कारमान का योग, इन 5 योगों के बिना। हाँ दस योग, क्या कहते हैं आप, आहारक है तो पर्याप्त है, आहारक मिश्र है वो अपर्याप्त है। क्या प्रश्न है आपका, देखो अकेले छठवें गुणस्थान की अगर हमारा क्राइटेरिया होगा, आलाप होगा, तो उसमें पर्याप्त भी होगे और अपर्याप्त भी होगे, तब तो हम आहारक और आहारक मिश्र भी लेंगे और औदारिक को भी कहना पड़ेगा, अकेला छठा गुणस्थान ही कहना है तो, और फिर उसके मन के वचन के भी होगे उसमें, ये सभी गुणस्थानों में पर्याप्त लेना है हमको, है ना। उनको तो सामान्य नहीं है, उनको ऐसा कहना ये 2 और आगे के, यानी उनके 2 कम किए तो 13 हुए और आगे के 3 कम किए तो 10 हो गए, ऐसा 10 ही होने हैं।
देखिए 100 नंबर का टेबल तो सामान्य आलाप है, और 101 वाला जो है वो पर्याप्त आलाप है, लेकिन उसमें उन्होंने 13 जो लिखे वो अपेक्षा नहीं मिला।
तेरह योग में से ये 2 कम का, ये 3 कम करना, ऐसा लेना वहाँ।
तो देख 10 लिखते हुए 5 माइनस करते तो क्या फर्क पड़ता,
देखो देखो
ये मिसलीडिंग हो रहा है।
पहला सामान्य काल आप निकालना, पहले पृष्ठ पर 503 पेज पर जो लिखा हुआ है वो नीचे से दूसरी लाइन, वैकृत कायोग वैकृत मिश्र कायोग के बिना तेरह योग, ये कौन सी बात चल रही है? सामान्य मनुष्य है, पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है, तो वहाँ ये तेरह योग है। अब उसमें से इन तेरह में से क्या कम करना है? तो तीन कम करना है। देखो ऊपर मूल संस्कृत देखो, तेरह योगा ओराली आहार मिश्र कम में यही बिना दस, जो अभी हमने तेरह देखे थे ऑलरेडी देखे थे, वहां तो वैकृत वैकृत मिश्र निकाल देने दिया था, तो मनुष्य में तेरह थे, मनुष्य में पॉसिबल कितने हैं? तेरह। अब उन तेरह में से तीन कम कर दो, ऐसा हाँ पर्याप्त के लिए। हाँ देखो देखो, वैकृत वैकृत मिश्र तो होते ही नहीं है, तो अपर्याप्त और पर्याप्त मिलाकर कितने होते? तो तेरह में से हो गए, वैकृत के दो निकाल दो तो तेरह रह गए। हाँ तो अभी जो बचा है उसमें से अकेले पर्याप्त को लेना है, तो उसमें औदारिक मिश्र आहारक मिश्र और कारमाण ये तीन निकालना, यानी ये जो तेरह लिखे है वो मनुष्य गति के तेरह, उसमें से तीन कम कर दो। देखो छठे गुणस्थान में जब आहारक रिद्धि के द्वारा वो आहारक शरीर बनाते हैं, तो जब तक अपर्याप्त है तब तक आहारक मिश्र, पर्याप्त होने पर आहारक का योग। बिल्कुल पर्याप्त नाम कर्म के बिना तो वो कोई मुनि नहीं होगी, गर्भ में ही नहीं आएगा, जो गर्भ में आया है वो पर्याप्त ही जीव है, है ना? और अयोग वाले चौदहवें गुणस्थान की अपेक्षा अयोगी जीव, योग की बात ख्याल में आई? पहले मनुष्य गति में तेरह बताए थे, उसमें से यहाँ दस है पर्याप्तों में और तीन अपर्याप्तों में है, ए, 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 इतना ही सब। हाँ ये दो के बिना, ये जो सामान्य की अपेक्षा तेरह योग सामान्य में थे, यानी सामान्य मनुष्य में, देखो अपर्याप्त मनुष्यों में कौन कौन से गुणस्थान हो गए? तो विग्रह गति में जो हो गए वो कौन से हो गए? पहला दूसरा चौथा और अभी छठे वाले को भी जब आहारक मिश्र है वो भी अपर्याप्त है, और केवली समुद्घात जब कारमाण का योग और मिश्र है तब ये अपर्याप्त है। आहारक मिश्र दोनों अपर्याप्त नहीं, आप आहारक मिश्र अपर्याप्त है, आहारक हो जाते हैं तो पर्याप्त हो जाते हैं, आहारक शरीर की भी वहाँ पर्याप्ति है ना, वो भी पर्याप्ति पूरी होती है तो वो आहारक का योग रहता है वहाँ, ख्याल है? देखो ये योग की बात हो गई, हम 504 पृष्ठ पर है, नीचे जो चौथी लाइन अभी वेद की बात करेंगे। मनुष्यों का सामान्य यानी सामान्य मनुष्यों का पर्याप्त आलाप चल रहा है, तो तीनों वेद तथा अभी हमने 14 गुणस्थान देखे, तो 9वें के पहले भाग के बाद सभी अपगत वेदी होगी, तो अपगत वेद स्थान भी है, मिला मंजूबे? नीचे से तीसरी लाइन, अब चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है, चारों ही कषाय कहाँ तक है? हाँ चारों ही नौवे तक है, फिर दसवें में एक सूक्ष्म लोक। अभी जो चारों ही कहेंगे तो नौवे के पहले में भी चारों है और दूसरे में कितने हैं भाई? चार है, दूसरे में भी चार है। देखो पहले में चार कषाय और एक वेद है, दूसरे में चार कषाय है, इसकी बात नहीं, सभी वेद को हम एक साथ कहते हैं। नवे गुण स्थान में पहले भाग में पांचों है, यानी वेद भी है और चारों कषाय भी है। दूसरे भाग में चार कषाय है, वेद निकल गए, अपगत वेदी हो गया। तीसरे भाग में तीन कषाय है, चौथे भाग में दो कषाय और पांचवे भाग में एक कषाय रह गया लोभ वाला। हाँ, ये जो नौवे में जो है लोभ, वो बादर लोभ है, और दसवें में सूक्ष्म लोभ है ना। कषाय कहाँ तक है तो दसवें तक है, और चारों कषाय कहाँ तक है तो नौवे तक है, और ज्यादा स्पेसिफिक कहना है तो नौवे के दूसरे भाग तक, फिर एक एक कषाय कम हो जाएगी आगे। क्या एक कषाय एक एक मिटती है, उसी अपेक्षा से नौवे के पांच भाग की है। पहले वेद गया, फिर क्रोध, फिर मान, फिर माया और लोभ रह गया। देखो देखो, पहले भाग में तीनों वेद जाते हैं, पहले भाग में तीनों वेद जाते हैं। अब वो कैसे जाते हैं वो यहाँ नहीं, हमने खाली सबको मिलाकर बता दिया। अब उसमें से पहले नपुंसक वेद का उदय मिट जाता है और फिर पुरुष वेद का मिटता है, तो वो तो चर्चा वहाँ आएगी, जब आएगी क्षपणासार में। हाँ नहीं, उसमें भी एक एक वेद चला जाता है ना, कैसे पहले कौन सा जाता है फिर कौन सा जाता है उसके बाद। तो ये अपगत वेद स्थान भी है, चारों कषाय और अकषाय स्थान भी है। अब चौदह ही गुण स्थान हमने लिए, तो आठों ही ज्ञान है, सातों संयम है, चारों दर्शन है, द्रव्य और भाव से छह लेशा है, तथा अलेशा स्थान भी है। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, छह सम्यक्त्व, सौनिक तथा सौनिक और असौनिक, इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान है। क्या कहते हैं, एक तो सौनिक है, कहाँ से कहाँ तक सौनिक है? बारहवें तक संगी, और फिर तेरहवें चौदहवें वाले को संगी और असंगी दोनों ही नहीं है। आहारक और अनाहारक भी होते हैं। तो मेरा प्रश्न है, अनाहारक कौन कौन से गुणस्थान में होंगे? पहले चौदहवा बता दिया, चलो। हाँ बोलो, छठा नहीं, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ कारमान का योग नहीं होता, मिश्र है ना, औदारिक मिश्र होता है, आहारक मिश्र होता है। तेरवे में कारमान का योग में तीन समय के लिए समुद्घात में, ख्याल है, और जब ये विग्रह गति में होता है तब, और अयोगी वाले। तो ये यहाँ इसलिए आहारक अनाहारक दोनों ही लिए। अरे पर्याप्त में, पर्याप्त में कैसे लिया? मनुष्यों के पर्याप्त अवस्था में अनाहारक होने का कारण यह है। हाँ हाँ हाँ, ये केवली वाले, अयोगी केवली भगवान के, हमने उसको सुधारा था पहले। शरीर के निमित्त भूत आने वाले परमाणुओं का अभाव देखकर पर्याप्त मनुष्यों के भी अनाहारक पना बन जाता है, अयोगी केवली के। हमने पहले उसको डाला था ना इसमें, अपने गोमर सार में ये नहीं था, और हमने उसमें लिखवा था साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, तथा साकार अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। अब विशेषार्थ, पहले योग आलाप का कथन करते हुए वैक्रेयिक द्विक, आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र और कारमान का योग के बिना 10, अथवा केवल वैक्रेयिक द्विक के बिना 13 योग बतलाए हैं। 10 योग तो मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था में होती ही है, परंतु अपर्याप्त अवस्था में होने वाले औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र और कारमान का योग को मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था में बताने का यह कारण है कि यद्यपि 13वें गुण स्थान में समुद्घात के समय योगों की अपूर्णता रहती है, फिर भी उस समय पर्याप्त नाम कर्म का उदय विद्यमान रहता है और औदारिक शरीर की पूर्णता भी रहती है। इसलिए पर्याप्त नाम कर्म के उदय और शरीर की पूर्णता की अपेक्षा कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्घातगत केवली भी पर्याप्त है, और इस पर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र तथा कारमान का योग बन जाते, इसलिए वहां अथवा लिखा था उन्होंने। इसी प्रकार छठवें गुणस्थान में आहार मिश्र का योग के समय भी पर्याप्त नामकर्म का उदय रहता है, इसलिए निवृत्ति से अपर्याप्त होता हुआ भी निर्वृत्ति चाहिए। वो के ऊपर भी देना उसका निर्वृत्ति, निर्वृत्ति अपर्याप्त नहीं अभी बन रहा है वो, इसलिए निर्वृत्ति अपर्याप्त है वहां पर। ऐसा जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय की अपेक्षा पर्याप्त ही है, अतः आहार मिश्र का योग भी पर्याप्त अवस्था में बन जाता है। इस प्रकार पूर्वोक्त तीनों योग विवक्षा भेद से पर्याप्त अवस्था में भी बन जाते हैं। डॉक्टर आपका ये प्रश्न का उत्तर आया यहाँ, देखो यहाँ हमने देखा ना कितने कितने हैं, तो 13 क्यों किए, 13 ये इनकी अपेक्षा से कि समुद्घात में भी और छठे गुणस्थान में भी जब वहाँ वो अपर्याप्त है, वो निवृत्ति अपर्याप्त है, परंतु उस समय भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो विवक्षा यहाँ बताई है। हाँ, इसलिए मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था में 13 योग भी गिनाए हैं। ये ख्याल आया, देखो क्या कहते हैं, छठे वाले जीव को भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और 13वें में भी पर्याप्त नाम कर्म, यानी शरीर पर्याप्त हो चुका है वहां पर, और अभी जो समुद्घात की अपेक्षा से वहां अपर्याप्त कहा, फिर उस अपर्याप्त अवस्था में भी पर्याप्त शरीर वहां है ना, जैसे मुनि छठे गुणस्थान में है तो वो तो औदारिक शरीर उनका पर्याप्त है, पूरा है, और आहार की अपेक्षा उनकी अपर्याप्ति बन रही है, और वो भी अपर्याप्ति कैसी, निवृत्ति अपर्याप्त वाली, यानी उसकी अपेक्षा ख्याल में रखकर वो मिश्र का योग भी पर्याप्त उनको हो सकता है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं।
देखो पहले तो ये हमने क्राइटेरिया क्या लगाया, पर्याप्त, और इन पर्याप्तों में भी हमने आहारक मिश्र और औदारिक मिश्र इन दोनों को भी गिनाया, तो ये क्यों गिना, इसलिए वो बताना चाहते हैं, और कारमान भी उसमें गिनाया। तो भाई अपर्याप्त में कारमान ने मिश्र हो ही छे, आइधर वैकरिक मिश्र और औदारिक मिश्र। अभी तो यहाँ पर तो हम सिर्फ मनुष्यों की बात कर रहे हैं, मनुष्य गति का जीव, और वह भी पर्याप्त, ये हमारा क्राइटेरिया है। तो अभी इसमें ये मिश्र वाले कैसे हो सकते हैं, ऐसा हमको यानी मुझको भी ये प्रश्न उठा था, लेकिन यहाँ जो विशेषार्थ में ये बताया है कि अभी जो जीव छठे गुणस्थान में है तो वो छठे गुणस्थान वाला जीव पर्याप्त होगा क्या अपर्याप्त होगा, पर्याप्त होगा, तो उस पर्याप्त अवस्था में भी उसके औदारिक मिश्र चालू हो गया, आहारक मिश्र चालू हो गया, और वह आहारक मिश्र उधर है उसको, लेकिन वहाँ पर्याप्त शरीर औदारिक भी है, इसलिए उसको वहाँ है, ऐसा बताया। अब केवली भगवान के बारे में वह भी समुद्घात कर रहे हैं तब भी वे पर्याप्त जीव है, और वहाँ पर भी औदारिक मिश्र और कारमान भी आ जाएगा, तो वह दोनों और ये एक तीन इस तरफ, और पहले जो हमने 10 देखे थे वो, ऐसे 13 भी है यहाँ, ये बताना चाहते हैं। हमको तो पहले लगा कि उसमें कुछ दूसरी अपेक्षा होगी, लेकिन वो अपेक्षा से ये अपेक्षा अधिक फर्म लगती है।
हाँ, 10
अभी अपने को तो पूरे पर्याप्त लेने हैं ना, पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक के सब की बात लेनी है, तो यहाँ तो अपर्याप्त अवस्था कब कब होगी, छठे में होगी और 13वें में होगी, केवली समुद्घात में, उस अपेक्षा से हम देखते हैं। तो हमको तो टोटल गिनानी है ना, कितने उसमें योग होंगे, तो ये 13 योग की जो बात की है वो बिल्कुल दिमाग खाने वाली बात है, मतलब सोचेंगे तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है।
हम जब आलाप कहेंगे तो सामान्य से जो पर्याप्त वाले हैं वही कहेंगे, ख्याल है ना, क्योंकि आगे चलकर गुणस्थानों की भी चर्चा आएगी, तो वहाँ तो पर्याप्तों में तो पर्याप्त ही आलाप गिना है, जो पर्याप्त के वो पर्याप्त के कहेंगे, पर्याप्त पर्याप्त दोनों को मिलकर हो गए तो हम सबको गिनाएंगे उसमें। अब जब जो उसका विषय आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। नहीं, 13 वैक्रिक बिना, फिर रुकना, बीच में लाइन ड्रॉ करना पेंसिल से। देखो नंबर 101 नंबर का जो चार्ट है वहाँ योग वाला जो है 13 लिखा है, वैक्रिक 2 बिना, बराबर। अभी उसमें एक पेंसिल से आड़ी लाइन करो, फिर 10। ये 10 की अपेक्षा कौन सी है? मन के चार, वचन के चार, औदारिक और आहारक, ये 10। 13 में खाली वैक्रिक 2 निकाले थे उन्होंने। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी उन्हीं जो सामान्य अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर, सामान्य मनुष्यों में अपर्याप्तों के आलाप कहने, अश्विन भाई लगाओ आप। एक, दो, चार, छः और 13। जीव समास, हाँ, 6 अपर्याप्तियाँ। प्राण, कितने प्राण हो गए? 7 प्राण अभी आ गया। हाँ, प्राण प्राण गिनाने ऐसे हम सोचते कुछ और है। हाँ हाँ, 7 प्राण। संज्ञा, और 13वां गुणस्थान भी लिया है आपने, क्षीण संज्ञा। गति, मनुष्य, इंद्रिय में, काय में। हाँ, अब योग गिनाओ, कर्म, ये 3 अपर्याप्त होंगे कि नहीं? 3। हाँ, वेद, 3 वेद, और केवली में अपगत वेद। हाँ, कषाय में 4 और अकषाय। हाँ, ज्ञान में 2 कुज्ञान, 3 सुज्ञान और 1 केवल ज्ञान। कौन सा नहीं लिया मंजू बहन? मनपर्य नहीं लिया, क्योंकि वो अपर्याप्त, वो आहारक वाला है, उसको मनपर्य ज्ञान नहीं होता। हाँ, और कौन सा नहीं? हाँ, विभंग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अपर्याप्त जीव है इसलिए। वो कहते हैं जैसे कषाय में क्षीण कषाय लिया है या वैसे ज्ञान में बिना ज्ञान नहीं कोई होगा। हाँ, संयम गिनाओ अभी। हाँ, पहले वाले को, दूसरे वाले को और चौथे वाले को असंयम गिना है। हाँ, फिर और बीच छठे वाले को छोड़ दिया। हाँ, और जवाब हो गया आगे। देखो परिहार विशुद्धि नहीं होगा। देखो यथाख्यात, तो यथाख्यात आपने ऑलरेडी बताया था। हाँ, देखो पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में असंयत है, छठे वाला कौन सा है? सामयिक छेदोपस्थापना, और 13वें वाले यथाख्यात। दर्शन, हाँ, 4 दर्शन, और लेशा अपर्याप्त में, द्रव्य की 2 और भाव की गिनाओ ना, पहले दूसरे। हाँ हाँ, 3 अशुभ होगी। हाँ, 6 होगी। भव्य की अभव्य दोनों है। सम्यक तो कौन कौन से हो गए? मिथ्यात्व, सासादन, औपशमिक नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा औपशमिक? क्योंकि छठे में नहीं हो सकता, और चौथे वाला औपशमिक में होगा कि नहीं होगा? नहीं, द्वितीय ऑप्शन वाला नहीं होगा। हाँ तो अपशमिक नहीं, और शाही किस में होगा? और छठे में? चौथे में? हाँ, देखो मिथ्यात्व साधारण क्षायिक और क्षौपशमी, और संगी में, और तेरवे वाले अनुवय, आहारक के अनाहारक दोनों हैं, और उपयोग दोनों, और युगपत। हाँ, ख्याल है ये आलाप, अभी हम इसको पढ़ेंगे। उन्हीं सामान्य अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, प्रमत्त संयत और सहयोगी केवली, ये पांच गुणस्थान। एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं तथा अतीत संज्ञा स्थान भी है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, आहार मिश्र का योग के साथ औदारिक मिश्र का योग और कारमाण का योग, इस प्रकार तीन योग। आहार भी लिखते इसमें, हाँ आहार भी लिखते, आहारक भी लिखते, दोनों बराबर है। तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है, चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है। केवल ज्ञान के साथ, केवल ज्ञान के साथ कुमति नहीं होता, परंतु जैसे केवल ज्ञान है वहाँ वैसे ही, क्योंकि हमने इतने सारे गुणस्थान गिना है ना। हाँ, कुमति कुश्रुत तथा आदि के तीन ज्ञान, ये छह ज्ञान। विभंग ज्ञान को नहीं लिया और मनपर्य को भी नहीं लिया। असंयम के साथ, यानी असंयम भी है पहले में, दूसरे में, चौथे में, और सामायिक छेदोपस्थापना और यथाख्यात रूप से चार संयम। चारों दर्शन, दर्शन गिनाए थे, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा, और भाव से छौ लेशा, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व और उपशम सम्यक्त के बिना, ये दो बिना, चार सम्यक्त्व, सौनिक और अनुभय, तथा संगीत और असंगीत, इन दोनों विकल्पों से रहित स्थान, क्या कहते हैं, सौनिक और अनुभय। अर्थात अनुभय का ही अर्थ क्या है, जो संगीत भी नहीं और असंगीत भी नहीं। आहारक अनाहारक दोनों, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी, तथा दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त होते हैं। अब यहाँ तो हमने सामान्य मनुष्यों के लिए 14 देखे, पर्याप्त मनुष्यों के देखे सभी गुणस्थान, अपर्याप्तों के 1, 2, 4, 6, 13 देखे। अब एक एक गुणस्थान लगाएंगे। तो सामान्य मनुष्य में मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहेंगे। विनोद भाई आप बताना, गुणस्थान पहला जीव समास, नहीं नहीं संगी पर्याप्त, पर्याप्त दो, हाँ, और पर्याप्ति संगी अपर्याप्त, अपने असंगी कहेंगे, नहीं नहीं संगी पर्याप्त और अपर्याप्त, हाँ हाँ, प्राण संज्ञा, हाँ गति, मनुष्य गति इंद्रिय, एक पंचेंद्रिय काय, त्रस का योग में, हाँ कौन कौन से 11, और कारम औदारिक मिश्र और कारमण, औदारिक औदारिक मिश्र और कारमण, हाँ वेद वेद तीनों कषाय, हाँ ज्ञान, कौन सा गुणस्थान चल रहा है, हाँ तीन को ज्ञान, संयम, दर्शन, दर्शन दो, हाँ क्या देखो, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, सामान्य है, पर्याप्त पर्याप्त दोनों है, तो औदारिक मिश्र भी और कारमाण भी, हाँ देखो वेद कहे कषाय कहे ना, ज्ञान हो गया, संयम हो गया, दर्शन दर्शन, हाँ लेशा बताना, हाँ द्रव्य की छह और भाव से छह, भव्य के अभव्य दोनों हैं, हाँ सम्यक तो कौन सा है, एक मिथ्यात्व, संगी संगी आहारक दोनों हैं, और उपयोग भी साकार अनाकार, अब ये सामान्य मिथ्या दृष्टि पर्याप्त, हाँ डॉक्टर आप बताना, पर्याप्त होंगे सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव पर्याप्त बताना, गुणस्थान पहला जीव समास पर्याप्तों के लगाना के संज्ञा पर्याप्त, पर्याप्ति छे प्राण दस संज्ञा चार गति मनुष्य इंद्रिय पंचेंद्रिय काय त्रस काय, अब योग बताना नौ, मन के चार वचन के चार और औदारिक, बहुत अच्छा, वेद तीनों बराबर है, कषाय ज्ञान तीन कुज्ञान, संयम और दर्शन दो दर्शन, बहुत अच्छा, लेशा में द्रव्य की और भाव की, द्रव्य की छ है पर्याप्त जीव है और भाव की भी छ है। हमने देखा मिथ्यात्वी को भी शुक्ल लेशा तक के परिणाम होते हैं, हमने कल ही चर्चा की थी, भव्य के अभव्य दोनों, सम्यक्त्व कौन सा होगा यहाँ एक मिथ्यात्व, संगी संगी, आहारक के अनारक आहारक पर्याप्त जीव है और उपयोग दोनों। अब मिथ्यात्व में अपर्याप्त लगाना है, पिनांग भाई आप लगाना, सामान्य ने पर्याप्त अपर्याप्त, यहाँ तो सब लेना है, मनुष्य नहीं को भी लेना क्योंकि सामान्य है, और फिर सामान्य में सभी भेद गर्भित है, पर्याप्त भी वो पहले हमने किया था, सामान्य मनुष्य का अर्थ क्या है, देखो ये पान नंबर निकालना है इसमें, पहले सामान्य मनुष्य वाला 503 वाला लिया हा? तो सामान्य मनुष्य में तो सबको लिया था, अभी उसमें सामान्य मनुष्यों में उन्होंने स्पेसिफिक बता दिया आपको कि सामान्य मनुष्यों में पर्याप्तों के बताओ, सामान्य मनुष्यों के अपर्याप्त के बताओ, ऐसे उन्होंने स्पेसिफिक बताया है, तब उसको बताना, जब मनुष्यनी का अलग आलाप आएगा तब उसमें कौन कौन सी बातें वो तब बताना उसको, यहाँ तो सबको इंक्लूड है, इसलिए यहाँ तीनों ही वेद लिए थे।
सामान्य जब हम कहते हैं तो जिनमें सारे जो भेद हम करने वाले हैं और या है उसको इंक्लूड करके जो होगा वो सामान्य, यानी उसमें पर्याप्त भी होंगे अपर्याप्त भी होंगे और मनुष्यनी भी होगी, यानी ये सब भेद जिसमें गर्भित है ऐसा एक सामान्य, उसको एक अलग ये बता दिया, कैटेगरी बता दी। अभी आपको यहाँ सामान्य मनुष्य अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि लगाना है, किसको आपको, हाँ
संज्ञा अपर्याप्त, हाँ पर्याप्ति छ अपर्याप्त, प्राण सात प्राण, संज्ञा गति एक मनुष्य, इंद्रिय एक पंचेंद्रिय काय त्रस काय, योग कितने हो गए बताना, भी कौन सा आलाप चल रहा है अपना अपर्याप्त, हाँ अपर्याप्त में फिर गुणस्थान बता दिया, मिथ्या तो गुणस्थान है, मिथ्या तो गुणस्थान में मिश्र कब ये योग कब होगा विग्रह गति में और वहां पहुंचने पर, दो हो गए, कौन कौन से औदारिक मिश्र और कारमाण, औदारिक मिश्र और कारमाण अपर्याप्त है ना, मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त है, ये कारमाण कब होता है और औदारिक मिश्र कब होता है पहले हम देखें,
इनको मालूम नहीं इसलिए वो जरा हिचकिचा रहे हैं, देखो कारमाण होगा जब विग्रह गति में होगा, यानी मोड़ वाला जो विग्रह गति में होगा जब, तो उस समय कारमाण, और जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसकी पर्याप्ति पूरी होने को चालू, मतलब शुरू हो गई,
पूरी होने तक उसको औदारिक
मिश्र कहेंगे, जब तक औदारिक हो वैकृत हो जो भी हो मिश्र, जब तक
और बाद में अवतारिक चालू हो जाता है तो हम उसको पर्याप्त कहेंगे। पर्याप्त अवस्था में अवतारिक है, अपर्याप्त अवस्था में अवतारिक मिश्र है और विग्रह गति में कारमाण है। हाँ बराबर है, बहुत अच्छा। वहाँ तो आहारक हो जाता है, मिश्र में आहारक हो जाता है और कारमाण का योग में जब तक है तब तक अनाहारक है। केवली का भी ऐसा ही समझना और विग्रह गति में भी ऐसा ही समझना। अभी वो छठे वाले को कारमाण का योग होता ही नहीं है इसलिए वहाँ आहारक ही रहता है। कषाय वेद बताए तिरण, हाँ कषाय चारों है ज्ञान। अभी अपर्याप्त जीव है, हाँ भाई संयम में असंयम, दर्शन बे लेशा द्रव्य नि बे, हाँ हाँ बोलो कितने हैं। मिथ्या दृष्टि पहले दूसरे गुण स्थान में पर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ है, पहले और आगे कहाँ है। देखो पहला और दूसरा गुण स्थान है मनुष्य हो या तिर्यंच है, अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ लेशा होती है। क्या ले मनुष्य में आता है तो वो अशुभ लेशा में आ जाता है। सम्यक दृष्टि हो तो उसमें तो छह हो सकती है। अभी अभी समझो, अभी सुधर जाओ जब पकड़ा हुआ गया। हाँ वो होती है, हम भी करते हैं, उसमें क्या बात। मिस्टेक कोई बात नहीं, आप मिस्टेक करते तो ये ज्यादा सबको एम्फसिस हो जाता है, अरे ये ऐसे मिस्टेक हुई थी। ऐसे मिस्टेक नहीं होती तो इतना ख्याल में नहीं रहता है ना। हाँ तो सबके परोपकार करते आप तो अच्छा है।
देखो भाई मिस्टेक हो गया तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, हम तो सुनो
सब करते
हैं। हम तो क्षयोपशम ज्ञानी है और क्षयोपशम ज्ञान में मिस्टेक नहीं होगी तो फिर केवल ज्ञानी हो जाएंगे। मतलब केवल ज्ञानी सब जानता है, वो मिस्टेक कभी नहीं करेगा। क्षयोपशम ज्ञानी तो करेगा ही करेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
यानी किसी की मिस्टेक हुई है और सब हंसे तो भी कोई बात नहीं, वो तो ये तो हम सब साथ ही है ना, सहस्वाध्याय है, उसमें कुछ ऐसी कोई बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं है।
अभी तो आठ ही आए इधर चीजों किधर।
यानी ऐसा है ना, हम थोड़ा मिस्टेक करेंगे तो नए लोगों को भी थोड़ा ऐसा उत्साह आता है, अरे चलो आप कोई हर्जा नहीं है, हम ही खाली मिस्टेक नहीं करते, सब लोग करते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। चले अभी लेशा बता रहे थे आप पिनांग भाई, अभी रिपीट करो, अभी भाव की लेशा बताओ, मिथ्यात्व अपर्याप्त में अशुभ। देखो मिथ्यात्व पर्याप्त अवस्था में देखा था हमने छह लेशा होगी भाव की, अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व और सासाधन में बता रही हूँ, तिर्यंच हो या मनुष्य हो मिथ्यात्व और सासाधन के अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ लेशा होती है। शासन दो गुणस्थान के अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ लेशा होती है, ये ख्याल में रखना। हाँ नहीं कुछ नहीं, अभी बार बार हम सुलझाएंगे वो तो याद रहे राज, ये तो याद रह जाएगा। मिथ्यात्व सासाधन में अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य और तिर्यंचों की अभी बात करेंगे, नारकी की तो वहाँ जहाँ की वहाँ जिस नरक में है वहाँ की लेशा होती है, देवों में जिस स्वर्ग में है वहाँ की लेशा होती है, और भवनत्रिक में भी वो तो अशुभ लेशा होती है, वो तो देवों का आलाप आएगा तब कहेंगे उसको। अभी तो हम तिर्यंच का देखा है हमने और अभी मनुष्यों का देख रहे इसलिए ये दो का रूल बता दिया, भूल जाएंगे कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा जब जब लेशा का प्रकरण आएगा तब तब उसको याद करेंगे। अभी तो ख्याल में आया मिथ्यात्व है अपर्याप्त अवस्था है तो भाव से तीन अशुभ लेशा, अभी द्रव्य की कैसे अभी हमको सबको फिट हो गए, अपर्याप्त में द्रव्य की दो होती है, तो वैसे भी द्रव्य ने शरीर का वर्ण, तो शरीर चौदहवें तक है, तो चौदहवें तक यानी वो सब पर्याप्त जीव है ना, तभी उसके शरीर का जो वर्ण है वही रहेगा, जो काला आदमी वो काला ही रहेगा, ऊपर के गुणस्थान में गया तो गोरा हो जाएगा क्या? लेशा वो भाव की लिखी है कि द्रव्य की लिखी? अच्छा, फिर पढ़ना और फिर पूछना। द्रव्य की लेशा तो कोई चेंज होने का सवाल ही नहीं है, शरीर का वर्ण तो वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। आपका प्रश्न है परम औदारिक शरीर है तो उसमें तो वो स्फटिक जैसा हो जाता है, परंतु वो शरीर का वर्ण तो रहता है ना वहाँ, जैसे थोड़ा उसकी जो झांक आती है, जैसे हम तीर्थंकरों के शरीर का वर्णन आता है ना, दो काले दो सांवले और वो कोई हरित कलर के कोई सुवर्ण कलर के है।
परम औदारिक शरीर का अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं हम, परम यानी जो लास्ट आखिर में उत्कृष्ट, जो आखिर का उत्कृष्ट, इस अपेक्षा से बारहवें गुणस्थान में जो निगोदिया जीव होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, तो अभी निगोद रहित तो जीव हो जाता है तो औदारिक में वो उत्कृष्ट शरीर मान लेना,
वो भी और स्फटिक जैसा है ना, जो वैसा स्फटिक का जैसा पारदर्शी जो है वैसे उस तरह से कुछ बनता होगा, कलर तो है उसमें
पारदर्शी होता है, इसीलिए उनका छाया नहीं
है, छाया भी नहीं है और चहुं ओर से दिख भी देता है, मुख भी सभी ओर से, वो उसकी विशेषता है, अतिशय है, वे चहुं ओर से दिखते ना कहीं से किसी एंगल से, अभी चारों बाजू के हम चार एंगल चार दिशा कहते, परंतु अब राउंड में बैठे सभी तो राउंड के हर एंगल से उनको मुख अपने तरफ देखेगा, ऐसे नहीं खाली पूर्व पश्चिम की ओर ही मुख होगा, चार ही मुख नहीं होंगे, यानी चार मुख तो होते ही नहीं है, किसी भी एंगल में बैठा उसको ऐसा लगता है अपने तरफ उनका मुंह है। देखो देखो हम क्या कहते हैं, जैसे अब समझाने के लिए हम चारों ओर कहते हैं, चारों ओर का अर्थ है सभी ओर, नंदीश्वर द्वीप में वो आता है वर्णन कि चहुं ओर उसकी वो जल है, चहुं ओर यानी सभी ओर। अभी ऐसे समोचरण में केवली भगवान विराजमान है तो हमें अपनी ओर दिखते हैं, और यहाँ कोई इस एंगल में बैठा उसको भी अपनी ओर दिखता है, इसको भी अपनी ओर दिखता है, कहने के लिए हम चहुं ओर कहेंगे, चहुं ओर यानी सभी ओर, चारों ओर यानी पूरा एंगल सर्कल में, और ये चार ओर वाला लेके अन्यमति ने चार मुख वाला कल्प लिया ऐसा कुछ। ये कहाँ तक आया हुआ ना ये आलाप अपना, क्या हाँ भावलेशा तेरमा सुधी, द्रव्यलेशा चौदहवें सुधी, ऐसा ख्याल में रखना शरीर कहाँ तक है, तब तक उसका द्रव्यलेशा यानी शरीर का वर्ण होगा, तो शरीर चौदहवें वाले को भी है तो वहां तक द्रव्यलेशा तो होगी है ना, और भावलेशा जब तक योग है अंत में संयोगी तक होगी। अब ये मिथ्या दृष्टि जीव है अपर्याप्त, भव्य है कि अभव्य है, बने सम्यक तो कौन सा है, मिथ्यात्व, संगी संगी है, आहारक के अनाहारक दोनों है, क्योंकि हमने योग में देखा था कारमान भी है और मिश्र भी है और उपयोग भी दोनों, अब इसको हम पढ़ेंगे। देखो उन्हीं मिथ्या दृष्टि सामान्य पर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर, एक 507 पृष्ठ पर हम आए हैं, पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था ना, सामान्य मनुष्य, अच्छा सामान्य को भी पढ़ना है, मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप तीन, हमने 507 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास मिला सबको, छह पर्याप्तिया छह अपर्याप्तिया, दशो प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, कारमान का योग, ये 11 योग, ये दोनों है ना, यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिलकर है। तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छहो लेशा है। देखो यहाँ पर्याप्त भी लिया है इसलिए छहो लेशा बताई। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब इन्हीं के पर्याप्त आलाप पहले देखेंगे। उन्हीं मिथ्यादृष्टि सामान्य पर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्त या दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक का योग, ये नव योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छहो लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये तो पर्याप्तों के हो गए, अब अपर्याप्तों की कहेंगे। उन्हीं मिथ्यादृष्टि सामान्य अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छहो अपर्याप्तिया, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक मिश्र और कारमान का योग, ये दो योग, तीनों वेद, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये दो अज्ञान, अपर्याप्त है ना, विभंग को छोड़ दिया, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाय, भाव से कृष्ण नील और कापोत, इसकी चर्चा भी हमने देखी थी। मिथ्या तो गुणस्थान है, अपर्याप्त अवस्था है, तीन अशुभ लेशा। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगी, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब ये मिथ्या तो गुणस्थान की बात हो गई, अब सासाधन गुणस्थान की होगी, उसमें भी पहले हम इसमें पर्याप्त अपर्याप्त लेना कि नहीं लेना, लेना, नरक गति में खाली छोड़ा था हमने अपर्याप्तों को, तो पहले सामान्य कहेंगे, फिर पर्याप्त कहेंगे, अपर्याप्त कहेंगे। तो सासाधन सम्यक दृष्टि सामान्य मनुष्यों के आलाप कहने पर, मयंक भाई आप बताना कौन रह गया, हाँ बताओ आप, हाँ दूसरा गुणस्थान जीव समास, संगीय पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों, पर्याप्ति 6-6, प्राण 10-7, संज्ञा गति इंद्रिय एक पंचेंद्रिय, काय में त्रस का, योग बताना, ग्यारह, बराबर पर्याप्त के और अपर्याप्त मिला के 11 हो जाते हैं। वेद तीनों कषाय, ज्ञान तीन कुज्ञान, संयम असंयम, दर्शन दो, लेशा 6-6, भव्य के अभव्य, सम्यक तो कौन सा है सासाधन, संगी के असंगी, संगी, आहारक के अनाहारक दोनों, और उपयोग। अभी मेरा प्रश्न है, हमने मिथ्या दृष्टि का सामान्य आलाप देखा था और सासाधन का देखा, तो कहाँ कहाँ डिफरेंस हुआ, विनोद भी आप बताएंगे, हाँ गुणस्थानों में डिफरेंस हुआ, सम्यक तो मार्गणा में हुआ, और हाँ वहाँ भव्य अभव्य दोनों थे, अब यहाँ भव्य ही है, है? अब इसी का पर्याप्त आलाप देखेंगे। हाँ तेजुबेन बताना, आप सासाधन सम्यक दृष्टि पर्याप्त जीव, हाँ गुणस्थान साधन हाँ मुझे सुनाई नहीं दिया। जीव समास संगी पर्याप्त पर्याप्ति हाँ छे प्राण दस संज्ञा चार बराबर है। गति मनुष्य गति इंद्रिय पंचेंद्रिय एक त्रस्काय योग नौ हाँ वेद वेद कितने तीनों हाँ कषाय चारों बराबर है हाँ ज्ञान तीन कूद ज्ञान हाँ मिथ्या तो और सासाधन में तो बिल्कुल फटाफट बोल देना हाँ। संयम कौन सा है असंयम हाँ देखो मैं पुस्तक की तरफ देखू तो आपकी तरफ देखो तो बिलीफ मूवमेंट समझ में आती है हाँ। दर्शन दर्शन में बोलो अभी माइक चल रहा है हाँ? दर्शन कितने हैं कूद ज्ञान के साथ दर्शन दो हाँ और लेशा द्रव्य की छे और भाव की छे पर्याप्त जीव है भव्य के अभव्य सासाधन है सब कहते इसलिए नहीं है आप क्या कहते हो क्यों भव्य है सासाधन गुणस्थान वाला कहाँ से आया है अभी सम्यक तो प्राप्त किया है तो भव्यों को होगा सम्यक तो क्या अभव्यों को होगा ख्याल है ना हाँ भव्यों को होगा सम्यक तो कौन सा है सासाधन हाँ संगी के असंगी हाँ आहारक के अनाहारक हाँ, और उपयोग दोनों बराबर। अब इसी में सासाधन में अपर्याप्त आलाप लगाना है आप लगाते हाँ लगाना गुणस्थान दूसरा जीव समास संगी अपर्याप्त पर्याप्ति छह अपर्याप्ति प्राण संज्ञा चार मनुष्य गति एक पंचेंद्रिय त्रस्काय योग कितने हो गए औदारिक मिश्र और कारमान बहुत अच्छा वेद तीनों कषाय चार ज्ञान दो कुज्ञान अपर्याप्त है ना इसे बहुत अच्छा संयम असंयम दर्शन दो लेशा द्रव्य की दो भाव की तीन अशुभ अभी अभी हमने देखा था सासाधन वाला है अपर्याप्त अवस्था है तीन अशुभ मिथ्यात्व में भी और सासाधन में भी अभी तो समझ लो याद मत रखो उसको बिल्कुल टेंशन रखो मत याद करने की हाँ भव्य ही होगा सम्यक तो सासाधन संगी है हाँ हाँ आहारक अनारक दोनों है और उपयोग भी दोनों कितना आसान है ना अभी इसको हम पढ़ेंगे देखो सासाधन सम्य दृष्टि सामान्य मनुष्यों के आलाप कहने पर ये पेज नंबर 509 पर से पढ़ रहे एक सासाधन गुणस्थान संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त ये दो जीव समास छहो पर्याप्तियां छहो अपर्याप्तियां दसो प्राण सात प्राण चारों संज्ञाएं मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय चारों मनोयोग चारों वचन योग औदारिक का योग औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग ये 11 पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के मिलकर तीनों वेद चारों कषाय तीनों अज्ञान असंयम चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन द्रव्य और भाव से छह लेशाय भव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक्व सौनिक आहारक अनाहारक स साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी इसी में उन्हीं साधन सम्यक दृष्टि सामान्य पर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर एक साधन गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छो पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चार मनोयोग, चार वचन योग और औदारिक कायोग, ये नौ योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीन अज्ञान, असंयम, चक्षु करना, वो चक्षु हुआ है, चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छो लेशाय, भव्य सिद्धिक, सासाधन सम्यक्व, सौनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। 107 में तीन अज्ञान करना है, 107 में ज्ञान के नीचे अज्ञा लिखा है, उसके ऊपर नंबर लिखना रह गया है, वो तीन नंबर लिखना। मैंने अभी पढ़ते समय ही किया था उसको करेक्शन। 510 पृष्ठ पर 107 नंबर के टेबल में हो गया। अभी अपर्याप्त काल संबंधी आप पर्याप्त हमने पढ़ा था, काल संबंधी अपर्याप्त का, अच्छा अच्छा अपर्याप्त काल संबंधी, वो काल अपर्याप्त उनका चल रहा है, अपर्याप्त काल चल रहा है, अच्छा, यानी अपर्याप्त का काल चल रहा है, इसीलिए काल का लिखा उन्होंने। कल हमने कहीं तो निकाला था ना, 497 पर, परंतु योनि नियम के काल कैसे हो सकता है? योनि नियम में तो काल नहीं लिखते, अपर्याप्त के संबंध में काल, अपर्याप्त का काल हम कह सकते हैं, योनिनी तो पूरा ही, सब पूरा ही उनका योनिनी का ही है। हाँ, अपर्याप्त काल संबंधित तेसिम चेव अपजत्ता अपजत्तानम भन्न माने, काल ये यहाँ भी नहीं, अपर्याप्त अपर्याप्त आलाप कहने पर ऐसा ही है। अभी तक देखो ना मिथ्या दृष्टियों में क्या लिखा था उन्हें, अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर, मनुष्यों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, ये कुछ गलत तो नहीं यहाँ पर, तो योनिने में वो गलत था। देखो अभी हम पढ़ रहे इसको, एक सासाधन गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तिया, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये दो योग, तीनों वेद, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये दो अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाय, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाय, अपर्याप्त चल रहा है ना, भव्य सिद्धिक, सासाधन सम्यक्व, सौनिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है सामान्य मनुष्यों के आलाप कहने पर, इसमें कितने आलाप हो गए, पर्याप्त अपर्याप्त ना, एक ही है। हाँ क्यों, अपर्याप्त में कोई ये नहीं, तीसरे गुणस्थान में कोई अपर्याप्त नहीं होता, मरेगा भी नहीं उसमें, जन्मेगा भी नहीं, तो अपर्याप्त आलाप इसमें नहीं होगा। कौन लगाना चाहते हैं अभी, मंदाविन्य आज नहीं लगाए, हाँ तीसरा गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, जीव समास, संगी पर्याप्त, पर्याप्ति छे, हाँ प्राण 10, हाँ संज्ञा 4, गति मनुष्य गति, इंद्रिय 1, पंचेंद्रिय, त्रस काय, योग कितने हो गए 9, बहुत अच्छा, वेद 3, कषाय 4, ज्ञान 3, मिश्र, बहुत अच्छा, ज्ञान अज्ञान का मिश्रित परिणाम है यहाँ, संयम, हाँ और दर्शन, दो लेशा, द्रव्य की 6 और भाव की, भाव की भी 6, क्योंकि पर्याप्त जीव है ना, चौथे तक 6 होती है, भव्य भव्य है, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व, संगी हाँ, आहारक आहारक है, उपयोग दोनों बहुत अच्छा। इसको पढ़ेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सम्यक दृष्टि है, सम्यक मिथ्या दृष्टि सामान्य मनुष्यों के आलाप कहने पर, 510 पेज पर है नीचे की लाइन। एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक का योग, ये नौ योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञानों से मिश्रित आदि के तीन ज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाय, भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्या, तो ग का खोड़ा करना उसको, पाए आधा ग करना, सम्यक मिथ्यात्व, सौनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब चौथा गुणस्थान, हाँ किसको लगाना है, मंजू बेन लगा, हाँ, असंयत सम्यक दृष्टि सामान्य मनुष्यों के सामान्य आलाप, सामान्य के सामान्य, हाँ
चौथा गुणस्थान,
हाँ एक चौथा गुणस्थान, हाँ संगी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, हाँ छह पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, हाँ दस सात, संज्ञा चार, एक मनुष्य गति, हाँ एक पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, योग ग्यारह, अरे वाह एकदम रेडी है, वेद तीनों, चार कषाय, ज्ञान कितने, सुज्ञान तो पांच होते हैं, तीन ज्ञान, बहुत अच्छा तीन ज्ञान, संयम कौन सा है यहाँ पर, असंयम, दर्शन तीन, लेशा द्रव्य की छह, भाव की छह, भव्य ही है, सम्यक तो कितने प्रकार, तीन, औपशमिक शैक्षा औपशमिक, संगी है, आहारक अनारक दोनों है, और उपयोग दो है। अब अपर्याप्त का लगाना है, हाँ अश्विन भाई, हाँ देवेंद्र भाई, हाँ अच्छा देवेंद्र भाई को लगाना, उनको सब अपर्याप्तों का आलाप आते हैं, हाँ एक चौथा गुणस्थान, संगी अपर्याप्त, पर्याप्ति कितनी, छह अपर्याप्त, प्राण सात, चार संज्ञा, एक मनुष्य गति, एक पंचेंद्रिय, एक त्रस काय, कौन से दो, हाँ औदारिक मिश्र और कार्मण्य है, एक पुरुष वेद, बहुत टाइम लगा, हाँ कई बार बहुत अच्छा है। देखो पुरुष वेद क्यों लिया, चौथा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान कहीं भी जाओ, अभी अपर्याप्त अवस्था है ना, मनुष्य में आया तो भी वो पुरुष होगा, तिरंच में भी पुरुष होगा, देव में भी पुरुष होगा, नरक में भी नरक में नपुंसक होगा, हाँ कषाय चार, हाँ जन्म से अपर्याप्त है ना, इसलिए जन्म से जो उसी में चौथा प्राप्त करता है वो तो तीनों ही हो सकते हैं, पर जो पूर्व भाव से जो सम्यक तो साथ में लेके आए वो पुरुष वेदी होगा, उसमें बाद में कोई वेद चेंज होगा ऐसा भी नहीं होता है, वेद तो वही रहता है उसका।
देखो आपका जो प्रश्न है कि ये पुरुष वेदी होगा क्या, तो इसमें तो हमने देख लिया कि ये अभी अपर्याप्त अवस्था का है, यानी वो सम्यक्त्व के साथ
अन्य भाव से आया,
विग्रह गति से आ रहा है और अन्य भाव में से आके यहाँ जन्मने वाला है मनुष्य में। इसका अर्थ ये हो गया कि पंचम गुणस्थान वर्ती स्त्री भी मरेगी मान लो, तो पुरुष वेद के साथ ही जन्मेगी आगे,
कहाँ जन्मेगी, देव में ही जाएगी, पांचवें गुणस्थान वाला देव में ही जाएगा, हाँ
और वहां से कोई आवे, मान लीजिए कि कोई देवगति की स्त्री है, देवांगना है, वह सम्यक्त्व के साथ मरेगी तो यहाँ आके पुरुष वेद में ही मतलब उसका शुरुआत
होगा, हाँ।
पुरुष चालू होगा,
द्रव्य भाव उसके पुरुष ही रहता है और फिर वो चेंज होने का कोई सवाल नहीं, मोक्ष में वो हो सकता है दो चार वो, हाँ सम्यक तो चालू रहे, गिरे नहीं, शायिक होगा तो पहले उसने शायिक किया होगा तो की बात है। शव श्रमिक समय तो उसका भले चार भाव तक दस भाव तक चालू रहे उसकी कोई बात नहीं। क्या ज्ञान ज्ञान बताया, हाँ तीन समय ज्ञान, संयम, हाँ दर्शन, तीन लेना अभी अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन को भी लेना है। लेशा बताना, हाँ द्रव्य की दो है, भाव की छह, क्यों छह लिया, मनुष्य में चौथा गुण स्थान है, हाँ देव से आएगा कोई नरक से भी आएगा सम्यक्त्व के साथ, तो अपनी अपनी लेशा में वो अपर्याप्त में होगा तो कृष्ण लेशा भी हो सकती उसकी। तो चौथे में अपर्याप्त अवस्था में भाव से छह लेशाएं बताइए, भव्य ही है, हाँ सम्यक तो कौन कौन से हो, हाँ दो ही सम्यक तो होगा क्योंकि मनुष्य में उत्पन्न हो रहा है तो अन्य कहीं द्वितीय उपशम के साथ मरने का सवाल ही नहीं उसका, मनुष्य में जन्मने वाले का ख्याल है ना। हाँ संगीय के असंग संगीय आहारक दोनों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब पर्याप्त उनका आलाप लगाना है, अश्विन भाई आप लगाओ चौथा गुणस्थान पर्याप्त उनका आलाप, चौथा गुणस्थान संगी पर्याप्त, छह पर्याप्तिया, दस प्राण, संज्ञा चार, संज्ञा मनुष्य गति त्रस्काय, योग नौ, वेद अब तीनों लिए ना पर्याप्त है, समय दृष्टि कषाय चार, तीन सुज्ञान, असंयम दर्शन, हाँ दर्शन तीनों, लेशा छे छे, भव्य सम्यक तो कौन से हो गया बताओ, तीनों है हाँ, संगी हाँ आहार कर, हाँ बहुत अच्छा। अब इसको हम पढ़ेंगे, अभी तो मालूम है हमें, और कहाँ हम अटक सकते हैं, लेशा है योग है थोड़ा सोचना पड़ता है, बाकी तो डप देखो 511 पृष्ठ पर असंयत समय दृष्टि सामान्य मनुष्यों के सामान्य आलाप कहने पर, एक अविरत समय दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास, छह पर्याप्तिया छह अपर्याप्तिया, दसों प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाएं मनुष्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस्काय, चार मनोयोग, चार वचन योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कारमण का योग, ये ग्यारह योग, तीनों वेद, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व, क्योंकि पर्याप्त पर्याप्त यहाँ लिए है इसलिए पर्याप्त की अपेक्षा औपशमिक भी होगा, सौनिक आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी इसी में पर्याप्त का आलाप लेना है, उन्हीं असंयत समय दृष्टि सामान्य पर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर, एक अविरत समय दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियाँ, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक का योग, ये नौ योग, ये टेबल भी देखना, कोई प्रेरणा भी ना आप देखा करो, हाँ आप देख रहे क्या, हाँ ठीक है, तीनों वेद, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व, सौनिक आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब उन्हीं असंयत समय दृष्टि सामान्य अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर, एक अविरत समय दृष्टि गुणस्थान, संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तियाँ, सात प्राण, चार संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्र और कारमाण का योग, एक पुरुष वेद, देखो केवल एक पुरुष वेद होने का यह कारण है कि देव नारकी और मनुष्य असंयत समय दृष्टि जीव मरकर यदि मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तो नियम से पुरुष वेदी मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, अन्य वेद वाले मनुष्यों में नहीं, इससे एक पुरुष वेद ही कहा है। हाँ अभी कुछ क्लियर होता है क्या? देखो देखो, वेद बांधने की बात नहीं, अभी वेद कौन सा उदय होगा उसकी बात है। वेदों का तो तीनों वेद का बंध मिथ्यात्व अवस्था में होता रहता है। मिथ्यात्व अवस्था में कभी पुरुष वेद बंधेगा, कभी स्त्री वेद, जैसे परिणाम है वैसे वेद बंधेंगे, क्योंकि वेद का ऐसा है तीन में से कोई एक बनता है। जैसे हम कहते ना कि दिन भर में मनुष्य गति बांधेगा, कभी नर गति बांधेगा, कभी देव गति बांधेगा, जैसे गति चार में से कोई एक बांधेगा, मिथ्यात्व अवस्था की बात चल रही है। वैसे वेद में भी तीन वेद में से कोई एक वेद बांधेगा। उदय भले अलग हो परंतु उसको बंधने में किसी भी वेद का बंध होगा। अभी सम्यक दर्शन होने के पश्चात कौन सा वेद बांधेगा? पुरुष वेद। क्यों? नरक सॉरी नपुसक वेद का बंध कहाँ तक है? अकेले पहले में। स्त्री वेद दूसरे तक ही, आगे नहीं है। तो आगे जो बंध होगा तो पुरुष वेद का ही बंध होगा, ख्याल है ना? समय दर्शन होने के पश्चात पहले जो बांधी है भले अंदर पड़ा है, तो पहले बांधी है तो पहले उसका उदय होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो जीव जिस गुणस्थान में जाता है, कितनी ही प्रकृतियां ऐसी है कि उसने पहले एकेंद्रीय पर्याय की भी, एकेंद्रीय जाति नाम कर्म भी बांधा था, स्थावर भी बांधा था, सब अंदर पड़ा है। वो अंदर पड़े से कुछ नहीं उसको लेना देना, और उसको वो भोगना ही पड़े ऐसी कोई बात नहीं। ये जो कभी नरक मिथ्यात्व अवस्था में उसने नरक गति, नरकायु नहीं, नरक गति भी बांधी होगी, और भी कुछ कुछ बांधे होगा, वो अंदर पड़ा है।
वो सत्ता में जो कर्म है वो कुछ तकलीफ नहीं
देते। सम्यक्त होने के बाद उसका उदय आने वाला ही नहीं है।
तो कैसे उदय में आएगा वो बताइए। देखो,
जो अन्य उसकी सिमिलर जो है सजातीय अन्य प्रकृति में संक्रमित होकर उदय आता है, और कितने ही संक्रमित हुए बिना ऐसी पड़ी रहेगी तो वो नौवे गुणस्थान में जब क्षय करने का प्रसंग आएगा तब उसका क्षय भी हो जाता है, या तब तक अन्य उसकी सजातीय जो पुण्य प्रकृति रूप परिणमित होता रहता है। आपका ऐसा प्रश्न है, आयु का बंध हो गया किसी को और फिर नीचे के गुणस्थानों में चला गया, आयु का बंध हुआ कोई तिर्यंच या नरक आयु का बंध हुआ, समय को प्राप्त कर लिया, तो समय को अवस्था में तो वह देवगति बांधता था और फिर मिथ्यात्व में चला गया, तो फिर चारों गति का बंध करेगा, आयु तो वही रहेगी। नहीं, वेद अलग, देखो नहीं, देखो गति तो नाम कर्म का भेद है, तो परिणामों के अकॉर्डिंगली नाम कर्म जो कुछ बंधेगा, और जो नाम कर्म बनते हैं और ये वेद है वो तो मोहनीय का भेद है, चारित्र मोहनीय का भेद है, तो वो भी परिणामों के अकॉर्डिंगली उसको उसका बंध होगा। देखो, आपका प्रश्न है, एक बार नरकायु बांधी और फिर वो सम्यक दृष्टि हुआ तो भी वो नपुसक वेद का बंध तो करने वाला नहीं है, पर पूर्व में करा हुआ अंदर पड़ा है उसका उदय आएगा। देखो, बंध की बात अलग है और उदय की बात अलग है। कुछ बांधा हुआ भी ऊपर के गुणस्थानों में चला जाता है तो ऐसे वो जो अशुभ टाइप की जो प्रकृतियां है उसका उदय आएगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे बंध भी मिटता है ना, विशिष्ट गुणस्थान तक ही बंध होता है, वैसे जो ये जो हीन प्रकार की प्रकृतियां एकेंद्रीय संबंधी है और सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त आदि आदि है, हीन सहनन वगैरह, ये जो सब कुछ है वो जो नीचे के गुणस्थान वालों का उसका उदय होता है, ऊपर के गुणस्थानों में उसका उदय नहीं होता है। जैसे किसी का बंध मिटता है वैसे उदय भी मिटता चला जाता है। देखो, सम्यक दृष्टि है, अपर्याप्त ने कहीं से सम्यक के साथ आया है तो उसको पुरुष वेद ही होगा। अकेले नरक के अपर्याप्त अवस्था में नपुसक वेद कहना, कोई भी गुणस्थान हो तो, कोई भी यानी पहला हो या चौथा हो तो। हाँ, आपका ऐसा हाँ आपका ऐसा प्रश्न है कि सम्यक तो होने के पहले उसने नपुंसक वेद भी बांधा है, स्त्री वेद भी बांधा है या कुछ भी बांधा है, और अभी वो सम्यक दृष्टि हुआ इसलिए क्या हुआ? हुआ तो अंदर वो पड़े, तीनों वेद के बांधे है उसने, तीनों वेद की सत्ता में तीनों ही पड़े रहते हैं, क्योंकि जीव तो अनादि से चलता है ना, ये तो बांधा हुआ इतने जल्दी खत्म नहीं होता है, तो कोड़ा कोड़ी सागरों का बंध होता रहता है, तो उसमें से यथा योग का उदय होता है, अन्य उस रूप होकर टर्न होकर उदय में आएंगे। अभी नरक गति के साथ बंधेगा, नपुंसक वेद भी बंध सकता है, उसमें पॉसिबिलिटीज है अलग अलग, पर उदय तो जब एक इंद्रिय में जाएगा तो नपुंसक वेद का ही उदय होगा।
देखिए आपके प्रश्न का उत्तर इस तरह हो सकता है कि आठवीं कर्म बंध रहे, अभी आयु को हटा दो, सात कर्म बंध रहे, तो यहाँ चारित्र मोहिनी कर्म भी बंध रहा है, और चारित्र मोहिनी के ये जो 25 भेद है वो भी बंध रहे हा? और यहाँ ये गति की जो बात आप कर रहे हैं वो गति तो नाम कर्म का भेद है, तो वो भी बंध रहा है, ये भी बंध रहा है, यथा योग्य हमारी जिस प्रकार के परिणाम होंगे कि जिस जीव के उसके अनुसार वो भी बंध रहा है, बनने में कोई तकलीफ नहीं, स्टॉक रहने में कोई तकलीफ नहीं, उदय के समय जो कुछ बात होगी वो तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो बात ख्याल में आएगी, लेकिन यहाँ कोई भी वेद बांधेगा तो बाद में जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो सम्यक दर्शन के बाद वह जीव पुरुष वेद का ही बंध करेगा, अन्य दो का नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना। अब उसका उदय कब आएगा, क्योंकि क्या है, इन्होंने जो पहले बताया ना, पहले गुणस्थान में नपुसक वेद का वे विच्छित्ति जो है, वो विच्छित्ति आपको मालूम नहीं है, बंध की विच्छित्ति, यानी विच्छित यानी उसके बाद में वो बंधेगा नहीं, अभी चौथे में आया तो दूसरे में तो स्त्री वेद का भी बंध रुक जाएगा, यानी दोनों बंध गए तो चौथे में तो पुरुष वेद ही बांधेगा। ये थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए मैंने बताया, क्या है कि इनका बहुत आगे का अभ्यास है और हमारे जैसे को समझाने में थोड़ा तकलीफ होती है उनको, तो ये मूल बात पहले रखना, उन्होंने तो बताया था लेकिन आपके ध्यान में नहीं आया, ये बंध की विच्छित्ति जो होती है उसके अनुसार आगे का उसका बंध नहीं होगा, और जो पहले से बांधे हुए स्टॉक में है वो भले रहने दो, वो संक्रमित हो गई या जब टाइम आएगा तो उस समय जो भी होगा आगे उसकी बात आएगी।
देखो अभी हमने देखा ना, पर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि है, तो वो हमने तीन वेद देखे थे, यानी उसको वेद का उदय अगर देखेंगे तो किसी भी तीन में से किसी का भी है, यानी स्त्री वेद का उदय भी नवे तक हो सकता है, नपुंसक का भी होता है, परंतु वो जो बांध क्या रहा है सम्यक दर्शन के बाद, कौन सा बांध रहा है, पुरुष वेद ही बांध रहा है, भले वो उसका उदय नपुंसक का हो या उदय स्त्री वेद का हो, वो बांध रहा है पुरुष वेद, ये बात है। समय दर्शन होने के पश्चात वो अकेले एक पुरुष वेद का ही बंध करेगा, उदय में भले तीनों में से कुछ भी हो, है ना। हाँ, उस समय भले बंधा हुआ मगर देखो, समय दर्शन करने के बाद जो पहले ऑलरेडी बांधा है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, जो पड़ा है अंदर वो पड़ा है, अब जो उसकी स्थिति पूरी हो जाएगी जब उदय रूप से हम जो सम्यक तो प्राप्त कर लिया है और सम्यक तो के साथ अन्य भाव में भी गया है, तो उस रूप होकर उदय में आ जाएगा। अभी जो नरक में गया कोई तो नपुंसक वेद रूप होकर उदय में आएगा, अभी कोई नार की यहाँ मनुष्य में आ गया तो पुरुष वेद रूप से जो पूर्व में बंधा था वो आएगा, या अंदर भी पड़ा रहेगा तो हमने तो देखा था नौवे गुणस्थान तक उसका क्षय हो जाता है, नौवे गुणस्थान में तो क्षय है ना। अभी जो कोई चार चार पांच पांच दस दस भवन से सम्यक दृष्टि है उसका भी वो नपुंसक वेद का क्षय होता है नौवे में, तो दस भव से तो उसने पुरुष वेद ही बांधा है, उसका सम्यक तो देव और मनुष्य, देव और मनुष्य चलता रहा है ना। जैसे महावीर भगवान का जीव सिंह अवस्था में दस भव पहले उनने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो पुरुष वेद का ही बंद कर रहे थे, तो नौवे गुणस्थान में नपुंसक वेद का स्त्री वेद का क्षय किया, वो कहाँ का था, वो तो कभी का बांधा हुआ अंदर पड़ा है तो उसका क्षय करते, ख्याल है ना। तो कुछ बांधा है तो उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, भले बांधा है तो परिणाम विशेष के कारण वो उसको भोगना पड़े ऐसा भी नहीं है, वो तो चेंज होते रहते, उसमें कितनी सारी उथल पुथल हो जाती है। ये जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, वो बंदे की विच्छित्ति क्या होती है, उदय की क्या होती है, यानी कौन सा उदय कहाँ तक है, ये बात समझ में आती है तो थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है। और अभी तो हम इसमें शुरू है, पहले दिन जितना सब ब्लैंक था अभी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना, प्राण क्या है, लेशा क्या है, योग पर पर्याप्त तो हो गए क्या आप अभी? देखो अभी हमने कौन सा देखा है जिसको पढ़ना बाकी है? हाँ कौन बता रहे थे? मैं पढ़ रही हुई थी, वो भी बिल रही। हाँ हाँ, केवल पुरुष वेद होने का कारण यह कि देवनारकी मनुष्य असंयत समय दृष्टि जीव मरकर यदि मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तो नियम से पुरुष वेदी मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, ये बात चल रही थी ना, अन्य वेद वाले मनुष्यों में नहीं, इससे एक पुरुष वेद ही कहा है। वेद आलाप के आगे चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से कापत और शुक्ल लेशा और भाव से छह लेशाएं होती है। अविरत सम्य दृष्टि अपर्याप्त मनुष्यों के छह लेशाएं होने का कारण यह है, पहले और दूसरे में तो हम अपर्याप्त में हमने तीन अशुभ देखी थी, अब चौथे वाले को क्यों कहते हैं, उसको भी अशुभ चलती रही, यानी उसको तीन अशुभ भी है और तीन शुभ भी है, क्यों? क्योंकि प्रथम पृथ्वी से छठी पृथ्वी पर्यंत पृथ्वियों में रहने वाले असंयत सम्य दृष्टि नार की मरण करके मनुष्यों में अपनी अपनी पृथ्वी के योग्य लेशाओं के साथ ही उत्पन्न होते हैं। पहले नरक का नार की कपोत में मरेगा, हमने देखा ना, पहले में जघन्य कपोत, दूसरे में मध्यम कपोत, तीसरे में उत्कृष्ट कपोत जघन्य नील, फिर आगे चौथे में मध्यम नील, पांचवे में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, छठे में मध्यम कृष्ण। अब यहाँ पहले से छठे तक को ही लिया, सातवें को क्यों छोड़ा? हाँ, सातवें वाला सम्यक्त्व के साथ मरता ही नहीं है, सातवें गुण सातवें नरक का नारकी सम्यक दर्शन की अवस्था में मरेगा ही नहीं, मरण के समय में निश्चितपणे वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो जो जो नारकी जिस लेशा में मरता है उसी लेशा के साथ सम्यक दृष्टि मनुष्य जो है उत्पन्न होगा, और इसलिए सम्यक्त्व के काल में भी अपर्याप्त काल में उसके अपनी अपनी कृष्ण नील या कापोत लेशा होगी, इसलिए उनके कृष्ण नील और कापोत लेशाएं पाई जाती है। उसी प्रकार असंयत सम्य दृष्टि देव भी मरण करके मनुष्यों में उत्पन्न होते हुए अपनी अपनी पीत पद्म और शुक्ल लेशाओं के साथ ही मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। अब कोई भवनत्रिक सम्य दृष्टि मरकर मनुष्यों में आएगा तो कौन सी लेशा होगी? हाँ बोलो, पीत लेशा। सौधर में ईशान वाले की भी पीत है, बीच वालों की पद्म है, ऊपर ऊपर शुक्ल है, इसलिए मनुष्य असंयत समय दृष्टियों के अपर्याप्त काल में छह लेशाएं बन जाती है। सम्यक्त्व आलाप के आगे भव्य सिद्धिक औपशमिक सम्यक्त्व के बिना दो सम्यक्त्व, क्योंकि मनुष्य में जन्मने वाले को औपशमिक नहीं होगा, मनुष्य से देवों में जाने वाले को तो द्वितीय औपशम होता है, परंतु अन्य कहीं तो द्वितीय ऑप्शन तो होता ही नहीं, तो वहां से मरकर वो कहीं कैसे होगा, और प्रथम ऑप्शन में कोई मरता नहीं है। तो दो सम्यक्त्व सौनिक आहार कनाहरक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब यहाँ तक तो हमने चर्चा की है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी